शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है।
शांत मन हो तन हो शीतल, शांत मन हो तन हो शीतल,
ऐसी दुनिया बनानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से
शांति, ओम शांति। अच्छा, सबसे पहले तो हम आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे बहन पूछ रही थी, आज जो यहाँ रुकने वाले हैं, जो पहले घूम चुके हैं, आबू घूम कर आ चुके हैं, वो हाथ उठाएंगे, पूरा लंबा हाथ उठाएंगे। हाँ, तो आप सबके लिए क्लास रखें। हाँ, जो यहाँ रुकने वाले हैं वो क्लास चाहते हैं तो ठीक है, सुबह 10:30 बजे दादी मीटिंग हॉल में जो भी यहाँ रुकने वाले हैं उनका क्लास रहेगा, और शाम को 6 बजे यहीं डायमंड हॉल में भी आपका क्लास रहेगा, ठीक है। तो पिछले 2 दिनों से हम राजयोग अभ्यास करते हुए ये अनुभव कर रहे हैं कि राजयोग के अभ्यास से हमें शांति मिलती है, सुख का अनुभव होता है। होता है या नहीं होता है? जो महसूस कर चुके हैं कि हाँ ऐसा अनुभव होता है वो हाथ उठाइए। देखिए, हाँ लगभग सभी। तो इसका अर्थ है कि प्रतिदिन हमें राजयोग का अभ्यास करना है, क्योंकि वर्तमान जीवन अशांत जीवन है, दुखी जीवन है। इतनी समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं कि हम सोचते हैं जीवन में शांति तो असंभव ही है, लेकिन यदि हम हर दिन राजयोग का अभ्यास करेंगे तो उन सब अशांति के कारणों से हमें मुक्ति मिल जाएगी। तो राजयोग वो योग है जो हमें कर्म इंद्रियों का राजा बनाता है, स्वयं का राजा बनाता है। सामान्यतः हम कर्म इंद्रियों के गुलाम होते हैं। कर्म इंद्रियों के गुलाम होने का अर्थ ये है कि हमें इंद्रियां चलाती हैं, मन उनके वश चलता है, मुख से जो शब्द हमें नहीं बोलने चाहिए वो हम बोलते हैं, कानों से जो हमें नहीं सुनना चाहिए वो हम सुनते हैं, आँखों से जो हमें नहीं देखना चाहिए वो सब हम देखते हैं, और उसका परिणाम होता है कि हम दुखी रहते हैं। लेकिन जब हम कर्मेंद्रियों के अधिकारी हो जाते हैं तो फिर इंद्रियां हमें नहीं चलाती, मन इंद्रियों को चलाता है। राजयोग हमें राजाओं का राजा बनाने वाला योग है। मनुष्य से देवता हम राजयोग के अभ्यास से बनते हैं, और देवताओं की पूजा राजा भी करते हैं, इसलिए उन्हें राजाओं के राजा कहा गया। तो वो आपने समझा है कि योग अभ्यास से हमारे संस्कार श्रेष्ठ होते हैं, और ऐसे श्रेष्ठ संस्कार आत्मा जब अपने साथ ले जाती है तो जन्म जन्मांतर उसे श्रेष्ठ कुल में जन्म मिलता है, देव कुल में उसको जन्म मिलता है। राजयोग अनेक राजों से भरा हुआ योग है, इसमें अनेक राज समाये हुए हैं, उन राजों को समझने के बाद हम इसका अभ्यास करते हैं। राजयोग अंधश्रद्धा नहीं है, ये ज्ञान योग है, समझ पर आधारित है। और इसमें हमें अपना लक्ष्य मालूम है, किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम ये योग कर रहे हैं। राजयोग एक चार्जर की तरह है, जैसे हम बैटरी को चार्जर में लगाकर चार्ज करते हैं तो वो फिर से काम करने लगती है। जो बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है वो डिस्चार्ज बैटरी फिर से चार्ज हो जाती है। उसके पीछे वैज्ञानिक विश्लेषण ये है कि जो बैटरी डिस्चार्ज होती है उसके केमिकल कंपोनेंट्स डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं, लेकिन जब उसे चार्जर में लगाते हैं तो केमिकल कंपोनेंट्स फिर से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, तो फिर से वो काम करने लगती है। तो ऐसे ही जब आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज होती है तब हमारे मन वचन कर्म सब अव्यवस्थित होते हैं, यानी डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं। हम सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। लेकिन जब आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती है तो फिर मन वचन कर्म में समानता आने लगती है, यानी वो ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। राजयोग एक बांध की तरह भी है, जैसे नदी में अधिक जल है तो उसे बांध बनाकर रोक दिया जाता है और फिर उसके रचनात्मक उपयोग होते हैं। उस जल से बिजली बनती है, उस जल से नहरें निकाल के सिंचाई की जाती है, उसे पीने में प्रयोग किया जाता है। और यदि उस जल को ऐसे ही बहने दिया जाए वो अधिक हो जाता है तो विनाशकारी भी हो सकता है। तो मन की शक्ति भी ऐसी ही है। तो राजयोग के द्वारा हम मन की शक्ति का रचनात्मक प्रयोग कर पाते हैं, मन को हम सही दिशा में चैनलाइज करते हैं तो हम सफल होते हैं, अपने लक्ष्यों को हम जीवन में प्राप्त कर पाते हैं। जिस उद्देश्य को लेकर हम इस संसार में आए उस उद्देश्य की पूर्ति करने में हमारा मन सक्षम होता है, नहीं तो ये जीवन निरुद्देश्य होता है। कहते हैं मन अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है। मन को हम मित्र बना लें तो ये असंभव को संभव करने की ताकत रखता है। और यही मन जब हमारा दुश्मन हो जाता है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो जीवन लक्ष्य भटक जाते हैं। हम अनेक प्रकार के योग भारत में करते हैं, पर जैसे अभी सुना कि राज योग सर्वश्रेष्ठ योग है और ये सभी योगों का फल देने वाला है, क्योंकि ये योग किसी संत महात्मा ने नहीं सिखाया है, ये योग स्वयं परमात्मा ने इस धरा पर अवतरित होकर के सिखाया। आप समझ चुके हैं वर्तमान समय कलयुग का अंतिम समय चल रहा है और काल चक्र के समय के अनुसार जब जब धर्म की ग्लानि होती है उस समय परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होकर के पुनः सद्धर्म की स्थापना कर रहे हैं और मनुष्य को धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ बना रहे हैं। तो वही हमें सिखाते हैं कि मुझे कैसे याद करो, मुझसे संबंध का अनुभव कैसे करो। तो इसीलिए सब योग उस योग में समा जाते हैं। तो अनेक प्रकार के योग जो भारत में किए जाते हैं वो है ज्ञान योग, बुद्धि योग, कर्म योग, भक्ति योग, संन्यास योग, समत्व योग, हठ योग। तो राजयोग ज्ञान योग है क्योंकि समझ है मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, कहाँ मुझे जाना है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो ज्ञान पर आधारित है। राजयोग बुद्धि योग है, इसमें हम मन और बुद्धि का प्रयोग करते हैं। मन और बुद्धि के द्वारा ईश्वर से संबंध स्थापित करते हैं। मन और बुद्धि अदृश्य माध्यम है, जैसे आज हमें अदृश्य माध्यमों का अनुभव है, आज विज्ञान के युग में ऐसी अनेक चीजें हैं जो बहुत अदृश्य रूप से हमारा संवाद स्थापित कर देती हैं। मानो हम मोबाइल से बात करते हैं, जिनसे हम बात कर रहे हैं वो हमसे मीलों दूर होंगे, देखने में तो कुछ भी कनेक्शन नहीं हो रहा है, कोई वायर नहीं है, हाँ लेकिन फिर भी हमारी उनसे इस तरह से बात हो रही है जैसे कि वो हमारे सामने हैं। तो ऐसा नहीं है कि कुछ माध्यम नहीं है, अवश्य है, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा है, वो अदृश्य है। मेरे मोबाइल सेट से कुछ तरंगे निकलती हैं जो टावर से होती हुई उस व्यक्ति के मोबाइल सेट तक पहुंचती हैं जिससे हम बात करना चाहते हैं, और वहां से भी संप्रेषण होता है और हम उन्हें सुन पाते हैं। लेकिन ये सब इतना तीव्र गति से होता है कि बिल्कुल हमें ऐसा लगता है कि हम सम्मुख ही बात कर रहे हैं। आज हम रिमोट से कई चीजों को ऑपरेट करते हैं, हम दूर बैठे हुए टीवी को रिमोट से चलाते हैं। अब देखने में तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है कि टीवी कैसे ऑन हो गया, चैनल कैसे चेंज हो गया, लेकिन फिर भी कुछ तो तरंगे हैं जो मेरे टीवी सेट तक पहुंच रही हैं और उसे कार्य करवा रही हैं। ऐसे ही जब हम मन को ईश्वर की ओर ले जाते हैं, यानी मन में ईश्वर के प्रति चिंतन करते हैं, तो मेरे मन से जो विचार तरंगे उत्पन्न होती हैं, वो विचार तरंगे परमात्मा तक पहुंचती हैं। भले ही वो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन ईश्वर तक वो पहुंचती हैं। आज तक हम भक्ति करते हैं, हम मूर्ति के सामने खड़े होते हैं, हमें पता है मूर्ति तो जड़ है, मूर्ति नहीं सुन रही है, लेकिन फिर भी मेरे मन के जो भी भाव हैं हम मूर्ति के सामने व्यक्त करते हैं। ज्यादातर क्योंकि कलयुग स्वार्थ का युग है, तो हमें जो भी ईश्वर से चाहिए, जो हमारी मनोकामनाएं होती हैं, वो हम भगवान के सामने रखते हैं। तो मानो मेरी वो मनोकामना पूरी हो गई, तो हम क्या कहेंगे, भगवान ने मेरी सुन ली। अब कैसे सुन ली, मूर्ति ने तो नहीं सुना, मूर्ति तो जड़ है, किसने सुना? हम सोचते हैं भगवान जहां भी है, मूर्ति तो माध्यम है, लेकिन भगवान जहां भी है उस तक मेरे दिल की बात पहुंच गई। तो ऐसे ही मन के द्वारा हम अपने भावों को ईश्वर तक पहुंचाते हैं, ये राजयोग में आप अनुभव कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि राजयोग हम कर रहे हैं कुछ अनुभव तो नहीं होता है, हो सकता है किसी को न भी हुआ हो। अभी सबने हाथ उठाया, मैच्योरिटी से अभी हमने पूछा तो हाथ उठाया कि हाँ हमें सुख और शांति का अनुभव हुआ। तो कैसे हुआ? जैसे ही हमारा ईश्वर से संबंध हुआ, मन का संबंध, तो मन ने उस सुख और शांति को ग्रहण किया जिसका ईश्वर दाता है। मेडिटेशन और प्रेयर, ये दो शब्द हम इंग्लिश में कहते हैं। प्रेयर माना प्रार्थना करना, स्तुति करना, हम उसे स्तुति भी कह सकते हैं। तो हम अपनी बात भगवान को कह देते हैं, लेकिन भगवान से हम सुन भी सकते हैं ऐसा हम नहीं समझते, क्योंकि हमें ये अज्ञान है कि ईश्वर तक कैसे पहुंचा जाए। तो हम सिर्फ अपनी बात कहकर भगवान के सामने आ जाते हैं, लेकिन मेडिटेशन करना, योग करना, ये टू वे कम्युनिकेशन है। यानी मैंने अपने मन की बात ईश्वर से कही, भगवान तक वो पहुंची, और मेरा संबंध ईश्वर से जुटा हुआ है, तो वो जो मुझे ऊर्जा दे रहे हैं, वो जो मुझे शक्ति प्रदान कर रहे हैं, वो भी मैं आत्मा ग्रहण कर पा रही हूँ। तो इसे हम कहते हैं टू वे कम्युनिकेशन। ट्रांसमिशन भी है और रिसीव भी हम कर रहे हैं। तो ये बुद्धि योग है जिसके द्वारा हम मन रूपी तीसरे नेत्र से, अंतर चक्षु जिसे हम कहते हैं, उस अंतर चक्षु से हम आत्मा और परमात्मा के विषयों को देखते हैं। मन किसी भी विषय को देख सकता है, जो ये दो आंखें नहीं देख सकती वो मन देख सकता है। अभी आप सभी यहाँ बैठे हैं और यदि मैं घर कहूँ, अगर मैं कहूँ आप अपने घर में मन से जाकर आइए, सभी जाकर आइए, क्या सबने घर को देख लिया? हाँ, जो समझते हैं हमने मन से अपने घर को देख लिया वो हाथ उठाओ। देखिए, अब ये दो आंखों से तो नहीं दिख रहा है घर, ये दो आंखों से तो आप डायमंड हॉल में बैठे हैं, लेकिन मन से देख लिया, तो इसीलिए मन को अंतर चक्षु कहा गया। तो जब हम उस घर को देख सकते हैं जो इस संसार का हमारा घर है, तो क्या इस संसार से पार हमारा जो घर है उसको नहीं देख सकते? देख सकते? नहीं देख सकते। तो हम रोज परम धाम में जा सकते हैं, नहीं जा सकते? मन से हम परम धाम में चले जाते हैं और परम धाम में परमात्मा को याद करते हैं। मेरे पिता हैं, वो परम धाम में रहते हैं, जैसे घर में माता पिता रहते हैं। तो अगर मैंने घर को याद किया तो घर में जो जो भी रहते हैं उनकी स्मृति मेरे मन में आ जाएगी। अभी हम घर वापस जाकर उनसे क्या बात करेंगे, हमने वहाँ क्या अनुभव किया, वहाँ हमें कैसा लगा, मानो तो उनका चित्र मेरे दिमाग में है। ऐसे ही मेरे पिता वहाँ रहते हैं परम धाम में, तो जरूर मेरे मन में उनकी स्मृति आ जाएगी। तो राजयोग में हम अंतर चक्षु का प्रयोग करके उसका अनुभव करते हैं। और राजयोग कर्म योग भी है, आपने समझा, ये सहज राजयोग है, बहुत सहज है। इसके लिए कोई हमें कठिन क्रिया करने की जरूरत नहीं है। आज तक जो हम सुनते आए कि भगवान को याद करने के लिए तो मंत्रों का जाप करना होता है, कई प्रकार के उसकी स्तुतियां होती हैं, या माला फेरना है तो कितनी बार हमें उस माला को फेरना है, कई हमें आसन भी करने पड़ सकते हैं उसके लिए, नहीं कठिन क्रियाएं, तीर्थों पर जाना, गुरुओं के पास जाना, फिर वो गुरु कोई नाम जपने के लिए बताएंगे तो उसको जपना, ऐसी क्रियाएं हम आज तक करते रहे हैं। लेकिन राजयोग में परमात्मा हमें कहती हैं ये सब स्थूल क्रियाएं करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसे एक बच्चा सहज अपने पिता को याद करता है, कल आपने राजयोग की आधार विधि विषय में भी समझा कि सहज याद होती है, क्योंकि संबंध है, प्रेम है, संबंधों में जहाँ प्रेम होता है वहाँ याद करना नहीं पड़ता है, अपने आप याद आती है। और अगर एक बच्चा अपने पिता को याद कर रहा है या माँ को याद कर रहा है तो वो आंखें बंद करके याद नहीं करता है, कोई उनका ध्यान लगा रहा है, ऐसे नहीं। लेकिन उन्होंने जो हमारे प्रति किया है वो बातें याद करके हम नेचुरल उनको याद करते हैं। ऐसे ही परमात्मा की याद बहुत नेचुरल हर कर्म करते हुए हो, ये शिव बाबा हमें सिखाते हैं। तो हम दिन भर में अनेक कर्म करते हैं, कई कामों में हमें बुद्धि लगानी होती है, कई कामों में हमें बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं होती, हम इतने अभ्यस्त होते हैं कि वो सहज हमारे हाथ चलते रहते हैं और मन कुछ और सोचता रहता है। जैसे घर में माताएं खाना बनाती हैं तो खाना बनाते हुए, रोटी बेलते हुए कोई सारा ध्यान रोटी बेलने में ऐसा नहीं होता है, रोटी बेलते हुए मन कुछ और सोचता रहता है। ऐसे कामों में जो साधारण कार्य हैं, चाहे हम घर की सफाई कर रहे हैं, चाहे हम कहीं जा रहे हैं, रास्ते में हैं, हम मन को ईश्वर में लगा सकते हैं। भगवान हमसे एक संकल्प की दूरी पर है। जैसे हम कहते हैं स्विच ऑन किया और ऑफ किया, कितना समय लगता है, कितना समय लगता है, एक सेकंड लगता है हमने स्विच ऑन किया। और ऐसे ही मन की स्मृति का मैंने स्विच ऑन किया, ईश्वर के प्रति मेरे मन में चिंतन चला, तो वही योग है। इतना सहज है ये राजयोग, और इसीलिए हम इसको कर्म योग कहते हैं कि चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते हम परमात्मा को याद कर सकते हैं। तो जितना मेरा समीप का संबंध ईश्वर के साथ होगा, उतना ही ये अनुभव मुझे सहज होगा। और यदि हम ईश्वर की याद में कर्म करते हैं तो वो कर्म सत्कर्म हो जाते हैं। भले ही वो देखने में साधारण कर्म है, लेकिन वो कर्म हमें पदम गुना फल देने वाले होते हैं। जैसे कर्मों की तुलना हम बीज से करते हैं, कल आपने सुना कर्मों की गति में कर्मों की तुलना हम बीज से करते हैं, तो जैसा बीज हम बोते हैं वैसा फल होता है। यदि मैंने किसी अनाज का बीज बोया तो मुझे फल जरूर मिलेगा, लेकिन एक सीजन तक मिलेगा, एक बीज से अनेक फल मिल जाएंगे, अनेक बीज मिल जाएंगे। लेकिन अगर मुझे दूसरे सीजन में अनाज चाहिए तो मुझे दोबारा उसे बोना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने आम का बीज बोया तो वो आम का बीज मुझे तुरंत फल नहीं देगा, मुझे इंतजार करना पड़ेगा कुछ वर्षों तक। लेकिन जब वो एक बार फल देना शुरू करता है तो फिर हम ही नहीं खाएंगे लेकिन हमारी पीढ़ियां भी उस फल को खाएंगी, वो अनगिनत होता है। तो राजयोग में कर्म योग भी इसी प्रकार का बीज है कि कर्म करते हुए हमने ईश्वर को याद किया तो वो कर्म हमें वर्तमान में ही फल नहीं देते, लेकिन जन्म जन्मांतर के लिए हमारे पुण्य कर्म संचित हो जाते हैं, जो हमारा प्रारब्ध और भाग्य होता है। तो क्यों नहीं, जब हमें इतनी पदम गुणा कमाई का अवसर भगवान देते हैं, जो भी कर्म ईश्वर के श्रीमद प्रमाण किए जाते हैं वो पदम गुना कमाई जमा करने वाले होते हैं। जिसे हम कहते हैं हर कदम में पदम है, एक कदम उठाया भगवान की याद में तो पदमों की कमाई जमा हो गई। तो राजयोग हमें इतनी ऊंची प्राप्ति कराने वाला योग है। ये भक्ति योग भी है। भक्ति का अर्थ होता है ईश्वर के प्रति श्रद्धा, प्रेम और समर्पण। और हम देखते हैं जितने भी परम भक्त हुए हैं इस संसार में, उनकी यही विशेषता थी कि भगवान से उन्होंने बहुत प्रेम किया, भगवान के प्रति उनका समर्पण था। वो समझते थे मेरा सब कुछ ईश्वर अर्थ है, तन मन धन सब कुछ तेरा। वैसे हम भी गा लेते हैं तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन होता नहीं है, सिर्फ बोलकर आ जाते हैं फिर सब कुछ मेरा ना। लेकिन उन्होंने सत्य में इसे अपने जीवन में महसूस किया। ऐसे परम भक्तों के नाम हम जानते हैं, मीराबाई हुई गुजरात में, नरसिंह मेहता थे, भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव, सती अनुसुईया, सूरदास, तुलसीदास, रैदास, अनेक भक्त ऐसे हुए हैं जिन्होंने भगवान से संबंध जोड़ा। कोई ना कोई विशेष संबंध उन्होंने ईश्वर से अनुभव किया, क्योंकि संबंधों से ही प्रेम और समर्पण भाव होता है। तो राजयोग में भी हम ईश्वर से संबंध का अनुभव करते हैं। हमने भगवान के लिए कहा त्वमेव माताश्च पितास्त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वमम देव देव, हे ईश्वर आप ही मेरे सब कुछ हैं, हमने ऐसा भगवान से कहा। तो सचमुच ईश्वर में वो शक्ति है कि वो सर्व संबंधों का अनुभव हमें करा सकता है, इंसान नहीं करा सकता। हर संबंध मनुष्य में अलग अलग होते हैं, माता अलग होगी, पिता अलग होगा, टीचर अलग होगा, गुरु अलग होगा, भाई अलग होगा, मित्र अलग होगा, लेकिन एक में ही सब समाये हैं, ऑल इन वन। ऐसे कहते हैं ना, टू इन वन, थ्री इन वन, लेकिन भगवान क्या है, ऑल इन वन। सब कुछ, सब संबंध, सर्व प्राप्तियां ईश्वर में समाई हैं, और यदि वो संबंध हम उससे अनुभव करने लगते हैं तो उसके प्रति जो प्रेम और समर्पण का भाव है वो भक्ति योग है। आज मीराबाई ने उसे अपने पति के रूप में याद किया, प्रहलाद ने उसे पिता के रूप में याद किया, अर्जुन ने उसे दोस्त के रूप में माना, सखा के रूप में माना, सूरदास ने भी उसे सखा माना। तो ये देखने में आया कि जब भी उन्हें आवश्यकता हुई तो परमात्मा उस संबंध से उनके सामने हाजिर हो गए, उस संबंध का उन्हें अनुभव कराया, उनकी रक्षा की। ऐसे ही राजयोग संन्यास योग है, और जब हम संन्यास का नाम सुनते हैं तो थोड़ा सा भ्रम पैदा होता है हमारे मन में, क्योंकि संन्यास करना हमारी भारतीय संस्कृति में सब कुछ छोड़कर चले जाना, घर बार छोड़कर, अपनी जिम्मेवारियां छोड़कर, कर्म छोड़कर कहीं तीर्थ पर बैठ जाना या कहीं जंगल में आश्रम बनाकर रहना और भगवान की भक्ति में लीन रहना। ये एक चित्र हमारे मन में आता है जब हम संन्यास की बात करते हैं। तो कई बार जब कोई हमारे से समीप संबंध रखने वाले इस ज्ञान की ओर रुचि दिखाते हैं तो मन में भय पैदा होने लगता है कि कहीं ये सन्यासी तो नहीं हो जाएंगे, कहीं घरवार छोड़कर तो नहीं चले जाएंगे, या हम जुड़े तो हमारे जो साथी संबंधी हैं उनमें भी ये भय पैदा होने लगता है, कहीं हमको छोड़कर तो नहीं चले जाएंगे। तो क्या छोड़कर चले जाएंगे, क्या कहेंगे? भगवान हमें ये संन्यास नहीं सिखाता है। घर बार छोड़ना, अपने संबंधों और अपने जिम्मेवारियों का त्याग करना, ये संन्यास परमात्मा हमें नहीं सिखाते। परमात्मा हमें इस घर बार में रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए, गृहस्थ को आश्रम बनाना सिखाते हैं, गृहस्थ में रहते हुए अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना सिखाते हैं, गृहस्थ में रहते हुए विकारों का त्याग करना सिखाते हैं, वो बुराइयां जिन्होंने हमारे जीवन को दुखी बनाया, वो विकार जो जीवन में विष खोलने वाले हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जिनसे हम दुखी हैं, छोड़ना ही चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते क्योंकि शक्ति नहीं है छोड़ने की, विधि पता नहीं है कैसे छोड़ें, वो विधि हमें ईश्वर सिखाते हैं। और घर परिवार में रहते हुए बुराइयों का त्याग करना, वो उस संन्यास से भी महान संन्यास है, क्योंकि कोई घर बार छोड़कर सन्यासी हो गया लेकिन बुराई नहीं छोड़ पाया। आज हम देखते हैं कितने साधु संत हैं जिनकी बुराइयां सामने आ जाती हैं, और जब बुराइयां सामने आती हैं तो लोगों की उनके प्रति श्रद्धा बिल्कुल समाप्त हो जाती है। घर बार छोड़ा ईश्वर के लिए लेकिन बुराई नहीं छोड़ पाए, तो वो सन्यास व्यर्थ हो जाता है। लेकिन जीवन में रहते हुए, संसार में रहते हुए, सर्व कर्म करते हुए बुराइयों का त्याग सबसे महान त्याग है, वो राजयोग में है। और राजयोग समत्व योग भी है। समत्व योग का अर्थ है जीवन में संतुलन होना। जितना हमारा मन संतुलित रहता है विपरीत परिस्थितियों में, जैसे हम कहेंगे निंदा स्तुति, मान अपमान, जय पराजय, हानि लाभ, सुख दुख, ये मनुष्य के मन को विचलित करने वाली स्थितियां होती हैं। या तो मनुष्य बहुत सफल हो जाए, सुखी हो जाए, तो उसे गर्व हो जाता है, या वो बहुत दुखी हो जाए, असफल हो जाए, हानि हो जाए, तो वो बहुत निराश हो जाता है, टूट जाता है। लेकिन हर स्थिति में मन स्थिर रहे, शांत रहे, संतुलित रहे, उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। यानी वो मन की समत्व स्थिति है जो राजयोग के द्वारा हमें जीवन में अनुभव होने लगती है। हम जितनी सहज स्तुति को स्वीकार करते हैं, उतना ही सहज हम निंदा को भी स्वीकार कर पाते हैं। जितना सहज हम जीवन में सुख से अनुभव करते हैं, उतना ही सहज दुख के पल भी हमारे लिए होते हैं। दोनों ही समान हमें लगते हैं, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है। उस दुख में भी उसका साथ हमें अनुभव होता है, तो दुख हमें दुख महसूस नहीं होता है। से ही राजयोग हठ योग है। दुनिया में हम देखते हैं अनेक प्रकार के हठ योग मनुष्य करते हैं। ईश्वर से अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए अनेक व्रत, उपवास, साधनाएं, जप तप करना, तीर्थ यात्राओं पर जाना, मानो नवरात्रे होते हैं तो कुछ लोग 9 दिन पूरा निर्जल व्रत रखेंगे, देवी मुझे दर्शन दे और चाहे मेरे प्राण चले जाएं, लेकिन मुझे अपना व्रत नहीं तोड़ना है। जब तक मुझे दर्शन नहीं होगा या जब तक मेरी ये मनोकामना पूरी नहीं होगी, ऐसा हठ हम भगवान के साथ करते हैं, मतलब कुछ जिद कर लेते हैं कि मुझे ऐसा चाहिए और मैं ऐसा करूं तो भगवान को मुझे वो देना ही पड़ेगा। कई बार लोग जब अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए जाते हैं और हो जाती है, तो मानो उन्होंने देवी से कहा, हम नंगे पैर, कितने मील देवी का मंदिर दूर होगा, हम नंगे पैर चलकर आएंगे, तो नंगे पैर चलकर जाते हैं। कुछ लोग साष्टांग दंडवत करते हुए जाते हैं, लेकिन राजयोग में हम ऐसा हट नहीं करते, हमें आवश्यकता ही नहीं है। हम जो हट करते हैं वो दृढ़ संकल्प और प्रतिज्ञा है ईश्वर के प्रति, वो व्रत हम लेते हैं। आज सारा दिन चाहे जो हो जाए मुझे गुस्सा नहीं करना है। जैसे वो व्रत लेते हैं हम खाने का, तो सारा दिन चाहे मेरे सामने कितने ही स्वादिष्ट पकवान आ जाएं, तो भी हम नहीं खाएंगे, हम कहेंगे मेरा व्रत है, आज नहीं कल भले खाएंगे, है ना। तो ऐसे ही ये व्रत मैंने आज रखा भगवान के सामने कि चाहे जो हो जाए मुझे आज गुस्सा नहीं करना है, तो फिर चाहे जो हो जाए, कोई कितना भी मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश करे, अब बातें तो बहुत आएंगी, जैसे हमने कल बात की, कोई मेरी बात नहीं मानेगा, कोई काम नहीं करेगा, कोई झूठ बोलेगा, कोई मेरी निंदा कर देगा, लेकिन फिर भी मुझे गुस्सा नहीं करना है, ये आज मैंने व्रत लिया है। और एक दिन यदि मैंने इस व्रत को पालन कर लिया, तो मुझे अपने ऊपर निश्चय हो जाएगा कि हाँ, अपने गुस्से को मैं जीत सकती हूँ। तो इस तरह से हम अपनी कमियों को दूर कर पाते हैं, ऐसा व्रत, ऐसी प्रतिज्ञा हम भगवान के साथ करते हैं। तो राजयोग इस तरह से हठ योग है। हम सभी ईश्वर को याद करते हैं, हमारी अपनी अपनी विधियां रही हैं, लेकिन राजयोग में हम क्या विधि अपनाते हैं वो आपने विस्तार से समझा है। लेकिन जब हम योग अभ्यास करना प्रारंभ करते हैं, आप यहाँ कर रहे हैं, तो मन को आध्यात्मिक चिंतन में ले जाना हमारे लिए इतना आसान नहीं होता है। जैसे ही मैंने मन को ईश्वरीय चिंतन देना प्रारंभ किया, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, क्या होता है, क्या होता है, मन खिसक जाता है तुरंत। मन हॉल के बाहर, आप हॉल में बैठे हैं, मन हॉल के बाहर आज आबू दर्शन के लिए जाना है। हाँ, जल्दी जल्दी नाश्ता करेंगे, सारे लोग मिल जाने चाहिए, कोई मिस नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे, फिर याद आएगा, अरे अभी तो मैं योग करने बैठी हूँ। हाँ, फिर मन को वापस लाएंगे। तो शुरू में हमारे मन से हमारा एक संघर्ष होता है, क्योंकि अभी तक हमें ये अभ्यास नहीं है कि मन को दिशा देनी है, या मन को हम जिस दिशा में चलाना चाहें वो हम चलाएं। तो कोई बात नहीं, कई बार हम बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही एक विचार करेंगे फिर मन कहीं बीती हुई बातों में चला जाएगा, किसी के बारे में सोचने लगेगा, काम के बारे में सोचने लगेगा, तो मन नेगेटिव विचारों में चला जाता है और शांति अनुभव होने की बजाय मन अशांत हो जाता है, क्योंकि हम योग नहीं लगा रहे। हमारा योग किसके साथ लग रहा है, हमारा योग या तो पास्ट के साथ लग रहा है, या फिर किसी व्यक्ति के साथ लग रहा है, भगवान के साथ योग नहीं लग रहा है। तो सिर भारी होने लगता है, सिर दर्द भी होने लगता है, तो कई भाई बहने कंप्लेन करते हैं कि बहन जी योग में बैठते ना तो सिर भारी हो जाता है। हाँ, किसी को ऐसा लगा कि योग में बैठते हैं तो सिर भारी हो जाता है, हाथ उठाइए। कोई कोई हाथ उठा रहे हैं, देखिए अब क्यों भारी हो रहा है, क्योंकि भगवान से योग नहीं लग रहा है, योग कहीं और जा रहा है। तो हमें निराश नहीं होना है, लेकिन ये अभ्यास है, और यदि हम मन को अभ्यास देते रहते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन उस चिंतन की ओर आने लगता है। जैसे हम कहेंगे ये दीवार हॉल की है मानो, इसे मुझे तोड़ना है, तो मैं इसे 100 हथौड़े लगाती हूँ, 100वें हथौड़े में वो दीवार टूटती है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे 99 हथौड़े बेकार हो गए। हर हथौड़े ने उस दीवार को कमजोर किया, तब 100वें हथौड़े में वो दीवार टूटी। ऐसे ही मैंने मन से 10 बार अभ्यास किया, 15 बार अभ्यास किया, मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ, मेरा मन लगता ही नहीं भगवान में, जाता ही नहीं ईश्वर की तरफ, भटक जाता है मन, लेकिन वो हर अभ्यास मुझे ईश्वर की ओर ले जा रहा है, वो मेरा हर चिंतन मुझे मदद कर रहा है। और आप महसूस करेंगे कि भले ही मन ना भी लगा हो, लेकिन फिर भी मन की स्थिति में अंतर आ जाता है। जब हम योग करके उठते हैं तो मन पहले से अधिक शांत होता है, होता है या नहीं होता, अंतर आ जाता है मन की स्थिति में। तो ये प्रारंभिक अवस्था थोड़ा संघर्ष की अवस्था होती है, जिसे हम कंटेम्पलेशन कहते हैं। हमें ज्ञान का चिंतन अपने मन में करते रहना है, जो ज्ञान आपने समझा, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, समय का ज्ञान, ये ज्ञान हमने प्राप्त किया है, उस ज्ञान को मुझे स्मृति में लाना है, वो शुद्ध चिंतन मेरे मन को शक्ति प्रदान करता है, और धीरे धीरे मन में इतनी शक्ति आती है कि हम इस संसार से मन को नियारा करके, इस संसार से मन को डिटैच करके परमात्मा की ओर, परम धाम में मन को ले जा पाते हैं। राजयोग अभ्यास की दूसरी अवस्था होती है रूरिहान की अवस्था। हम मन को ले गए परम धाम में, पहले मैंने आत्मचिंतन प्रारंभ किया, जो आप सभी ने समझा है, मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा अचरमर अविनाशी हूँ, ये शरीर धारण करके मैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपने कर्म कर रही हूँ, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, शुद्ध और पवित्र आत्मा हूँ, शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, ये सब आत्मचिंतन है। जो आत्मज्ञान मैंने प्राप्त किया है वो अपने आप को मुझे स्मृति दिलाना है और आत्मिक स्थिति में चले जाना है, और उसके पश्चात मेरा मन परम धाम में जाए। तो मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली हूँ, जैसे ही ये चिंतन मैंने मन में लाया, मन इस संसार से पार, भौतिक जगत से पार, सूर्य चांद तारों से भी पार परम धाम में पहुंच जाए, और वहां मैं शिव बाबा को, जो ज्योति बिंदु स्वरूप हैं, उन्हें अपने मन रूपी अंतर चक्षु से देख रही हूं। वो मेरे परम पिता हैं, परम शिक्षक हैं, परम सद्गुरु हैं, मेरे खुदा दोस्त हैं। इस संबंध से हम उन्हें याद करना प्रारंभ करते हैं। दुनिया में भी जो हमारे संबंध होते हैं, जितने समीप होते हैं उतना अधिक बातें हम उनके साथ करते हैं, और अगर वो दूर के होते हैं तो हम उनसे ज्यादा बात नहीं कर पाते। अब मानो कोई हमें मिला तो हम उनसे पूछेंगे, अच्छा कैसे हो, या कोई मौसम के बारे में, कोई इधर उधर के समाचार की बात कर ली, फिर समझ में ही नहीं आता क्या बात करें। लेकिन जो हमारे साथ रहते हैं उनसे हम अपनी हर बात कहते हैं, उनसे तो बोले बिना हम रह नहीं सकते। तो परमात्मा से आज तक हमारा दूर का संबंध था, तो हमें समझ में ही नहीं आता था भगवान से क्या बातें करें। लेकिन जैसे ही हम उसे अपने मात पिता, शिक्षक, गुरु के रूप में याद करने लगते हैं, मन उनके समीप अनुभव करने लगता है, तो फिर अपने जीवन की हर बात, जैसे आपने सुना कि अपने जीवन के हर चिंताएं, हर समस्याएं, हम कोई भी बात ईश्वर के साथ कर सकते हैं, जैसे हम अपने दोस्त के साथ करते हैं, अपने परिवार के साथ करते हैं, तो वो भी हमारे जीवन में इस तरह से एक भाग बन जाता है। तो वो रू रिहान करना, मन के भाव ईश्वर के प्रति प्रकट करना, आज तक हम कैसे करते हैं। एक बार एक बच्चा, उनके घर में गायें थी, तो माँ ने उसको बोला कि तुम गायें चरा के आ जाओ, आज ग्वाला नहीं आया है तो तू ले जा इनको मैदान में घास चरा ले। तो वो लेके गया उसको घास चराने के लिए, तो वो बच्चा जो है पेड़ के नीचे बैठ गया, क्योंकि गाय तो अपने आप चर रही थी। तो भोला था, और धीरे धीरे उसके मन में ख्याल आने लगा कि मैं यहाँ अकेला बैठा हूँ, भगवान भी ऊपर अकेला होगा, जैसे मैंने ये गाय चरने के लिए छोड़ दी हैं, अपने आप चर रही हैं, भगवान ने भी हमें इस दुनिया में छोड़ दिया है, हम भी अपने अपने तरह से हम अपना कार्य कर रहे हैं, तो फिर क्यों ना अभी वो भी ऊपर अकेला होगा जैसे मैं अकेला हूँ, तो मैं उनसे बातें करता हूँ। तो उन्होंने कहा, भगवान आप, मैं तो ऊपर नहीं आ सकता हूँ, आप ही मेरे पास आ जाओ, ऐसे ऐसे वो बातें कर रहा था। तो एक गांव के पंडित जी वहां से गुजरे, तो उन्होंने देखा ये लड़का कुछ बड़बड़ा रहा है, तो उसने उसको पूछा कि तुम किससे बात कर रहे हो, यहाँ आसपास तो कोई नहीं है। तो उसने कहा, मैं भगवान से बातें कर रहा हूँ। भगवान से बातें कर रहे हो, क्या बातें कर रहे हो? तो बोला कि मैं भगवान को कह रहा हूँ कि देखो जैसे ये गायें चर रही हैं, अपने आप चर रही हैं, मैं यहाँ अकेला बैठा हूँ, तुमने भी हमें संसार में छोड़ दिया, ऊपर तुम भी अकेले बैठे होंगे, तो आओ अभी हम साथ में कुछ खेलते हैं, मिलते हैं। तो उसने कहा, ऐसे थोड़ी भगवान से बातें की जाती हैं। भगवान से, भगवान को याद करने का एक तरीका होता है, उसकी स्तुति होती है, संस्कृत में श्लोक होते हैं। तो उसने कहा, मैं तुम्हें एक श्लोक याद करवा देता हूँ, तो तुम वो बोलो, जब तुम वो बोलोगे तो तुम भगवान को याद कर पाओगे। तो उसने कहा, ठीक है, वो तो बच्चा था, उसको इतनी समझ नहीं थी, तो उसने उसको संस्कृत का श्लोक याद करवाना शुरू किया। बच्चे को तो संस्कृत नहीं आती थी, बड़ी मुश्किल से उसने किसी तरह से उसे रट लिया। अब वो संस्कृत का श्लोक बोलने लगा, उसको ये भी पता नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि उसे उस संस्कृत के श्लोक का अर्थ ही पता नहीं, बोले जा रहा है उसका कोई भाव उसे समझ में नहीं आ रहा, तो भगवान के साथ उसके कोई भाव नहीं जुड़ रहे। जैसे हम सभी भी श्लोकों का जाप तो करते हैं ना, जैसे गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः सावितर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो नाम प्रचोदया। अब हम में से कितनों को इसका अर्थ आता होगा, हम बहुत मंत्र जपते हैं 108 बार 1008 बार, लेकिन पता ही नहीं इसका अर्थ क्या है। मेरे भाव जुड़े भगवान के साथ, क्या मेरा संबंध बना ईश्वर के साथ, जुड़ते ही नहीं है, बस हम मुख से मंत्र जपते रहते हैं। तो आज तक हम ईश्वर को सिर्फ इसी तरह से, जो किसी ने हमें विधि बता दी उस तरह से हम याद करते आए, तो संबंध नहीं बना, वो भाव भगवान से नहीं जुड़े। लेकिन राजयोग में हम परमात्मा से मन के भाव जोड़ पाते हैं और उन्हें हम अनुभव भी कर पाते हैं। तो रूढ़िहान करते हुए भगवान से संबंधों के अनुसार हम एकाग्रता की स्थिति में पहुंच जाते हैं, और एकाग्रता माना मन परमात्मा की याद में समा जाता है, मन खो जाता है, अन्य सभी बातों से न्यारा हो गया, देह और देह के संबंधों से, इस देह के संसार से हम पूरी तरह से न्यारे हो जाते हैं। दुनिया में हमको इसका अनुभव है, जब व्यक्ति किसी की याद में खोया होता है, मानो किसी को किसी से बहुत प्रेम होता है और वो बैठ करके उसको याद कर रहा है, तो उसे पता नहीं होता कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या बोल रहा है, वो सुनते हुए भी नहीं सुनता, देखते हुए भी नहीं देखता, क्योंकि वो कहीं और खोया हुआ है, वहां नहीं है। या कोई किसी काम में बहुत मगन है तो भी ऐसा ही होता है ना, पूरी तरह से अगर कहीं लगन हमारी लगी हुई है तो फिर हम आसपास के वातावरण से, व्यक्तियों से स्वतः ही डिटैच होते हैं। दुनिया में क्या हो रहा है मुझे पता नहीं होता है। तो राजयोग में हम ऐसा अनुभव सहज करते हैं, आंखें खुली रख के हम योग का अभ्यास करते हैं, आंखें बंद करके नहीं करते हैं। लेकिन मन अगर परमात्मा की लगन में मगन हो गया, उसमें एकाग्र हो गया, तो फिर मेरे आसपास क्या हो रहा है उससे मन परे हो जाता है, इसे हम एकाग्रता कहते हैं। जैसे एक कहानी आती है महाभारत में कि पांडवों और कौरवों को जब गुरु द्रोणाचार्य शस्त्रों का अभ्यास सिखा रहे थे, तो धनुर्विद्या की उन्हें परीक्षा लेनी थी, तो उसके लिए उन्होंने पेड़ पर एक नकली चिड़िया रखी और उसकी आंख पर निशाना मारना था। तो सबसे पहले उन्होंने दुर्योधन को बुलाया और कहा कि दुर्योधन इस चिड़िया की आंख पर निशाना मारो। पर उन्होंने कहा मेरे सवाल का जवाब पहले देना, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तो उसने कहा गुरुजी पेड़ दिख रहा है, डालियां दिख रही हैं, चिड़िया भी दिख रही है। तो गुरु ने कहा तुम हट जाओ, तुमसे निशाना नहीं लगेगा। फिर उन्होंने युधिष्ठिर को बुलाया, वही सवाल उससे पूछा। तो उसने कहा गुरुजी मुझे भी सब दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, चिड़िया भी दिख रही है। तो गुरु ने कहा तुम भी निशाना नहीं लगा पाओगे, हट जाओ। भीम को बुलाया, उसने भी वही जवाब दिया, तो उसको भी हटा दिया। अब अर्जुन को बुलाया, तो अर्जुन ने कहा कि गुरुजी मुझे तो सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो गुरु ने कहा तुम निशाना लगाओ। तो निशाना लगाया उसने और वो सीधा चिड़िया की आंख में लगा। तो इसका मतलब लक्ष्य पर नजर, अगर मेरी नजर अपने लक्ष्य पर है तो हम चूकेंगे नहीं, जरूर हम उसमें सफल होंगे। तो परमात्मा पर मेरा बुद्धि रूपी नेत्र एकाग्र हो जाए पूरी तरह से, उसी पर मेरी नजर हो, उसके अलावा कोई मुझे नजर नहीं आ रहा। और ऐसी स्थिति में यदि मेरा मन अशांत है तो हम शांति के सागर में समा जाते हैं और मन शांत हो जाता है। वो शांति कहाँ चली गई हमें पता भी नहीं चलेगा, जैसे कि वो शांति के सागर में ही समा गई। मेरा मन बहुत दुखी है मानो किसी कारण से, और परमात्मा में मन एकाग्र हुआ, वो सुख का सागर है, सुखदाता है, तो मन उस सुख में समा जाता है। और इसीलिए हम कहते हैं ईश्वर की याद हमें अतींद्रिय सुख का अनुभव कराने वाली होती है, और उसके लिए ही कहा जाता है सिमर सिमर सुख पाओ। जितना हम उसका सिमरन करेंगे उतना हमें सुख अनुभव होता है, वो सुख देने वाला है। ऐसे ही मन उदास है किसी बात से, हम उसकी याद में समा गए तो आनंद के सागर से मन पुनः आनंदित हो जाता है, वो सारी उदासी दूर हो जाती है। वो शक्ति है परमात्मा की याद में कि तुरंत हमारा मन परिवर्तन होने लगता है। और उस अनुभूति में हम जब समा जाते हैं, एकाग्रता से हम अनुभूति की अवस्था में पहुंचते हैं, तो सिर्फ शांति है मन में, सिर्फ सुख है, सिर्फ आनंद है, कोई विचार नहीं है। जिसे संतों ने समाधि की अवस्था कहा कि मन विचारों से भी परे सिर्फ अनुभूति में चला जाता है। तो अभी हम इसी आधार पर कुछ लंबा समय, क्योंकि आज आपका ये अनुभूति सत्र है, सुख और शांति की अनुभूति हमें राजयोग के द्वारा करनी है, तो हम 15-20 मिनट ये अभ्यास करेंगे। तो जैसे जैसे मैं आपको विचार दूंगी, जैसे आप प्रतिदिन अभ्यास कर रहे हैं, उस अनुसार आप अपने मन का चिंतन चलाते हुए उस अनुभव में मन को ले जाएंगे। तो सभी सीधे होकर बैठेंगे, अपनी पीठ सीधी रखें, आपके हाथ में कोई डायरी पेन पुस्तक कुछ है तो एक तरफ रख दीजिए, मन को समेट लें और तैयार करें कि ये मेरा समय परमात्मा की याद, ईश्वर की याद के लिए है। अंतर्मुखी हो जाएं और देखें मस्तक के मध्य में मैं एक आत्मा हूं। मैं दिव्य शक्ति हूँ, चेतनी शक्ति हूँ। अजर अमर अविनाशी हूँ। मैं सत्य चित आनंद स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ। निजी स्वभाव में मैं प्रेम स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ। मेरा निज धाम सूर्य चांद तारों से भी पार परम धाम है। मैं परम धाम से सृष्टि पर आई हूँ, देखें उस ब्रह्मलोक को जहाँ सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश है, संपूर्ण शांति है, यहाँ मैं आत्मा देह और देह की दुनिया से परे हूँ। जहाँ मेरे पिता परमात्मा निवास करते हैं, मैं परम ज्योति के अति समीप हूँ। शिव बाबा ही मेरे माता पिता, शिक्षक और सतगुरु हैं। वो शांति के सागर हैं, उस शांति का प्रवाह मैं स्वयं में अनुभव कर रही हूँ। मेरा मन शांति के सागर में समा रहा है। शांति मेरे मन को शांत कर रही है। महसूस करें कि ईश्वर का ये प्रकाश मुझ आत्मा पर पड़ रहा है और मुझे शांति और सुख का अनुभव करा रहा है। शांति में ही सुख समाया है। जितना मेरा मन शांत होता जाता है, उतना ही आनंद का अनुभव मैं आत्मा कर पाती हूँ। बाबा सर्वशक्तिवान हैं, मेरे कल्याणकारी परम हितैषी हैं। मुझे सद्बुद्धि प्रदान करने वाले हैं। ज्ञान के सागर हैं। मुझे तीनों कालों, तीनों लोकों का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बनाया है। मुझे परमात्मा ने अनुभव कराया कि सत्ययुग की आदि में मैं आत्मा देवात्मा थी, सर्वगुण संपन्न थी, संपूर्ण निर्विकारी थी और जीवन में सर्व प्राप्तियां थी। तन सुखी और निरोगी था, मन शांत और प्रसन्न था, धन में संपन्न थे और संबंध भी बहुत निस्वार्थ स्नेह देने वाले थे। इतना श्रेष्ठ जीवन मुझ आत्मा ने अनेक जन्मों तक अनुभव किया है। करीब 21 जन्म सर्व भाग्य मुझे अपने जीवन में प्राप्त थे। ये ज्ञान परमात्मा से मुझे प्राप्त हुआ है। मुझे ईश्वर ने पुनः स्मृति दिलाई है कि जन्म जन्मांतर के इस चक्र में मैं आत्मा इस कलयुग के अंत में पहुंची हूं, जहां मैं पुनः परमात्मा से योग लगाकर अपनी उस खोई हुई स्वराज्य की स्थिति को प्राप्त कर सकती हूँ, पुनः अपने देव स्वरूप को प्राप्त कर सकती हूँ, अनुभव कर सकती हूँ। मैं बहुत भाग्यवान हूँ, पद्मा पदम भाग्यवान हूँ, स्वयं परमात्मा ने मुझे अपना बच्चा बनाकर मुझे प्यार देकर मेरे जीवन को नई दिशा दी है। परमात्मा की याद मुझे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराने वाली है। भगवान के साथ के ये पल मेरे लिए बहुत अमूल्य हैं। जब मैं ईश्वर के संग में हूँ, और ईश्वरीय शक्तियों को स्वयं में अनुभव कर रही हूँ, बाबा आप ही मेरे सच्चे मात पिता हैं। आपने मुझे अपनी प्राप्ति जातियों का अधिकारी बनाया है। और मुझे परमात्मा पालना का अनुभव हो रहा है। ईश्वरीय स्नेह निस्वार्थ स्नेह है और ये स्नेह मुझे शक्तिशाली बनाता है। परमात्मा से शांति और सुख का अनुभव लेकर मैं पुनः इस भौतिक जगत में स्वयं को अनुभव कर रही हूँ, लेकिन अब मेरा मन शांत है, शक्तिशाली है और मुझे अपने कार्य व्यवहार में, संपर्क में अपने मन को ऐसे ही शांत रखना है और दूसरों को भी शांति का अनुभव कराना है। ओम शांति शांति शांति।